मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। 20 नवंबर 2015 के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। और दोस्तों, साथ ही स्वागत है उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में 15 दिन की लगने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दो युवा साथियों के नाम हैं निशा, जो इलाहाबाद से हैं, और निखिल मिश्रा, जो कोलकाता से हैं। तो निशा और निखिल, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही दो स्टूडेंट्स को मैं अपनी एकेडमी की ओर से, अपनी ओर से, और डेफिनेटली अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से भी हार्दिक रूप से बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने मेल लिखकर सूचित किया है कि उनका MPPSC के जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, अब वो इंटरव्यू में बैठेंगे। इन दोस्तों के नाम हैं, एक हैं विकेश बिसेन और दूसरे हैं जितेंद्र पाठक। और एक सुखद संयोग की बात है कि ये दोनों स्टूडेंट बालाघाट मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। तो विकेश और जितेंद्र, आप दोनों को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, और इंटरव्यू में आप दोनों सफल हों इसके लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसमें जो जितेंद्र पाठक हैं बालाघाट से हैं, इन्होंने सूचित किया है कि ये यहाँ एकेडमी के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। और जो बिसेन हैं, इन्होंने लिखा है कि जो प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड की गई और जो डेली ऑडियो गाइडेंस उन्हें मिला, उसकी वजह से उन्हें इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत अधिक मदद मिली है। आप दोनों ने जो एकेडमी के प्रति और ऑडियो गाइडेंस के प्रति आभार व्यक्त किया है, उसके लिए डेफिनेटली मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। फ्रेंड्स, एक छोटी सी सूचना है, और ये कोई नई सूचना नहीं है। जनरली हर फ्राइडे को आपकी मुलाकात इस सूचना के साथ होती है। सूचना ये है कि जैसा आप जानते हैं, कल डेली ऑडियो गाइडेंस नहीं आएगा, लेकिन बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, यानी कि नॉलेज सेंटर पर आपको अखबारों की क्लिपिंग्स मिलेंगी, और साथ ही योजना और कुरुक्षेत्र, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के दोनों की मैगजीन्स होती हैं, उनके आपको एक एक ऐसे आर्टिकल्स जो एग्जाम के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं, वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। और साथ ही फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, उनको स्पेशल ऑडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो मित्रों, अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर। फ्रेंड्स, कल हम लोग लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत एक स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे थे। बात अधूरी रह गई थी, जो सईद जाफरी साहब को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे। तो उनका एक अंश मैंने आपको पढ़कर सुनाया था, जो बड़ा खूबसूरत अंश था, और मुझे यकीन है कि वो अंश आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, एक चीज जो मैं अभी अचानक मेरे दिमाग में ये बात आ गई, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि देखिए, जब हम किसी भी चीज को सुनते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं, तो उसके बारे में हमारी दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि अच्छा लगा, खूब अच्छा था। जैसे कि अभी मैंने कहा कि जाफरी साहब का अंश सुनने के बाद वो आपको अच्छा लगा होगा, ये एक प्रतिक्रिया हुई कि हां, अच्छा था। दूसरी जो प्रतिक्रिया होती है, उसका संबंध प्रभाव से होता है, यानी कि वो प्रभावशाली था। देखिए, अच्छा होने और प्रभावशाली होने में एक बहुत बड़ा अंतर है, हालांकि वो अंतर बड़ा बारीक है, और शायद हम अपने डे टू डे की लाइफ में उसको उतनी तरजीह नहीं देते हैं, या कह लीजिए कि हम शायद बोलने में उतनी सावधानी नहीं रखते हैं। कभी कभी दोनों का इस्तेमाल भी हम एक ही तरह से करने लगते हैं। जैसे अच्छा लगना, ये अच्छा किसको लगता है? अच्छा हमारे मन को लगता है। जब हम कहते हैं अच्छा लगा, तो कहीं ना कहीं उसमें इंटरटेनमेंट का भाव भी रहता है कि ठीक है, मजा आया। लेकिन जब हम कहते हैं नहीं, वो बड़ा प्रभावशाली था, यानी कि उसका इंपैक्ट पड़ा, तो इंपैक्ट किस पर पड़ता है? इंपैक्ट मन पर नहीं पड़ता, इंपैक्ट दिमाग पर पड़ता है, इंपैक्ट विचारों पर पड़ता है। और सच पूछिए तो जब किसी चीज का हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, तभी वो हमारे अंदर एक तरह से कह दीजिए कि समा जाता है, और हमारे आचरण को, कंडक्ट को, विचारों को, व्यवहारों को कहीं ना कहीं एक अच्छा शेप देता है अगर प्रभाव अच्छा है तो, और अगर प्रभाव गलत है तो वो नकारात्मक रूप में भी हमारे विचारों और व्यवहारों को आकार देगा। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि दोनों अपनी अपनी जगह पर जरूरी हैं। हम दिमाग पर लगातार इतना बोझ भी नहीं डाल सकते कि लगातार हम प्रभाव के चक्कर में ही पड़े रहें कि प्रभावित हो रहे हैं, और न हम दिमाग को इतनी छूट दे सकते हैं कि वो लगातार केवल इंटरटेनमेंट ही ढूंढता रहे और पता लगा कि प्रभाव गायब होते जा रहे हैं। तो मित्रों, इन दोनों के बीच जो संतुलन होता है, सच पूछे तो वही सही मायने में हमारा निर्माण करता है और हमारे व्यक्तित्व को एक चौतरफा विकास देता है, मल्टी डायमेंशनल बनाता है। खैर फ्रेंड, ये तो मैंने अभी जो जाफरी साहब के बारे में जो एक मेरे मुंह से निकल गया कि अच्छा लगा होगा, उस संदर्भ में बात की। कल आपने देखा, महसूस किया होगा कि उन्होंने स्वतंत्रता को कितनी इंपॉर्टेंस दी है, और वो एक छोटी सी बात जो वास्तव में जिसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है कि स्वतंत्रता दूसरों को दी जानी चाहिए और जिंदगी में उसकी कितनी अहमियत होती है, इसको न समझने के कारण उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी, आप कह लीजिए, एक तरह से खालीपन में बिताया या एक पछतावे में वो जीते रहे। मित्रों, ये जो स्वतंत्रता है, इसे मैं अब थोड़े से अलग तरीके से आपके सामने रखना चाहूंगा, और खासकर इसलिए भी कि आप उसे थोड़ा सा विस्तार के साथ देख सकें। सामान्य रूप में तो आप जानते हैं कि जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ्रीडम की बात होती है, हम राजनीतिक रूप से आज स्वतंत्र हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फ्रीडम की भी बात होती है कि हम आर्थिक रूप से भी कितना स्वतंत्र हो पाते हैं। लेकिन यहां जो मैं स्वतंत्रता की बात आपसे करने जा रहा हूं, मेरा सरोकार सही मायने में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस से है, हमारी चेतना की स्वतंत्रता से है। मित्रों, बहुत गहराई पर सोचने के बाद, सच पूछिए तो पूरी ईमानदारी के साथ मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हम जो गुलाम हैं या हमारी स्वतंत्रता जो छीनने वाला जो व्यक्ति है वो हम खुद होते हैं, दूसरा कोई हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीनता नहीं है। और मजेदार बात यह है कि जब हम स्वतंत्रता की तलाश करते हैं, अपने स्वतंत्रता की तलाश में निकलते हैं, तो हम अपने को एक तरीके से बरी कर देते हैं, मार्जिन दे देते हैं, और ये मानकर कि मेरी स्वतंत्रता को इसने छीन रखा है, छीनने में कोई भी हो सकता है छीनने वाले में, कि ये मेरा दोस्त ये मेरी स्वतंत्रता को छीन रहा है, ये मेरी पत्नी ये स्वतंत्रता को छीन रही है, मेरे पेरेंट्स मेरे स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, मेरा बॉस मेरी स्वतंत्रता को छीन रहा है, पता है जिस जिन का भी आप नाम ले सकते हैं, ये मेरी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। मित्रों, स्वतंत्रता सही मायने में मुझे ये लगता है, जो पॉलिटिकल फ्रीडम्स हैं और जो रूल्स रेगुलेशंस की जो परतंत्रता होती है, जो मर्यादाएं होती हैं, वो एक अलग बात है, हम उनको पूरी तरह से गुलामी का नाम भी नहीं देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि स्वतंत्रता उच्छृंखलता नहीं होती कि हमको मनमानी करने की छूट मिल जाए, उसकी भी एक मर्यादा होती है, और ये जो रूल्स रेगुलेशंस कानून ये उन मर्यादाओं का निर्धारण ही करते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि अब ऐसी भी मर्यादाएं न हो कि सच में मर्यादा ही न रह जाए और वो वास्तव में गुलामी बन जाए, तो उसके बीच में एक संतुलन बनाया जाना चाहिए, वो एक अलग बात है। मैं जिस फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस की बात कर रहा हूं मित्रों, वो ये है कि हम दिमागी स्तर पर अपने आप को सही मायने में कितना स्वतंत्र महसूस करते हैं। देखिए, ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है, इसको हम झुठला नहीं सकते, मनोविज्ञान भी इसको सिद्ध कर चुका है, और भारतीय दर्शन तो संस्कार के रूप में इसे पहले से ही कहता आ रहा है कि हम जो हैं, यानी कि मैं जो हूं, याद रखिए कि मेरी उम्र कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो मेरी उम्र है, जो आपकी उम्र है, हम वही नहीं हैं। मैं जो सोचता हूं, मेरी जो चेतना बनी है, वो हजारों हजारों साल पुरानी चेतना है, वो पता नहीं कितने समय से वो विकसित होती चली आ रही है। अगर हम अपने इतिहास की भाषा में बात करें तो मैं कह सकता हूं कि मेरी जो चेतना है वो लगभग 4,500 साल पुरानी तो है ही, सिंधु घाटी की सभ्यता से। हालांकि वो सभ्यता है, उससे पहले भी मनुष्य था, लेकिन चलिए मुझे अपने बारे में जानने का जो मौका मिला एक सिस्टमेटिक तरीके से, वो सिंधु घाटी की सभ्यता से मिला। हालांकि उससे पहले आदिम मनुष्य भी रहा है और खेती भी और पशुपालन और ये सब करता हुआ आगे बढ़ा है। उस समय भी मेरी एक चेतना रही है, वो जो चेतना है जो वेदों की चेतना है या महाभारत की चेतना है या रामचरितमानस की चेतना है या बाइबल की चेतना है, मूसा की चेतना है, ये सब के सब हमारी अपनी अपनी चेतनाओं में शामिल हैं। तो जब मेरी चेतना में इतने सारे तत्व मिले हुए हैं, इन सब से मिलकर मेरी चेतना का निर्माण हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी चेतना स्वतंत्र है? लेकिन इसके बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि चेतना बनती ही ऐसे है और इसका हमें गर्व है कि हमारी चेतना जैसी भी बनी है हमारे पूर्वजों से होती चली आ रही है और आज हम इस रूप में मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है स्वतंत्रता के रास्ते में वो ये है कि कैसे मैं अपनी इस चेतना को एक नया रूप दूं। जैसे हमारे यहां दर्शन में कहा गया है कि ये जो शरीर है ये नष्ट होता रहता है, जैसे आत्मा पुराने जैसे हमारा शरीर पुराने कपड़ों को छोड़ के नए कपड़े धारण करता है, उसी तरह से जो आत्मा है हमारे पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। आप देखिए कि विकासवाद का कितना गजब का सिद्धांत है इसमें, यानी कि जो चीज है जो सतत चली आ रही है, जो निरंतर चली आ रही है, जो कंटिन्यूटी में है, जो बनी भी रहेगी, लगातार बनी रहेगी, वो भी बदलती रहेगी। यानी कि बनी भी है और बदल भी रही है। क्या खूबसूरत बात नहीं है दोस्तों कि बनी है वही चीज चली आ रही है लेकिन बदलते हुए रूप में। जैसे नदी के बारे में कहा जाता है दोस्तों, एक जैन संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि आप एक नदी को दोबारा पार कर ही नहीं सकते। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, आप एक नदी को पार करते हैं और जब उसे दोबारा पार करने लगते हैं तो दरअसल वो पानी तो बह करके जिसे आपने पहली बार पार किया था पता नहीं कहां पहुंच चुका है। अब तो जो आप नदी पार कर रहे हैं वो पानी दूसरा है और पानी ही नदी है। तो जिस तरह से हम एक नदी को दोबारा पार नहीं कर सकते, ठीक उसी तरीके से एक ही समय को हम दोबारा कैसे जी सकते हैं? नहीं जी सकते। वो लगातार समय भी नदी के प्रवाह की तरह बहता चला जा रहा है। तो मित्रों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है स्वतंत्रता के संदर्भ में वो ये होती है कि कैसे हम अपनी चेतना को लगातार इस बदलते हुए समय के साथ बदल रहे हैं, उसके साथ सामंजस्य बिठा रहे हैं। और जो व्यक्ति सामंजस्य बिठाने के इस काम को जितना सुंदर अंजाम दे देता है, मित्रों याद रखिए कि दो चीजें उसके साथ बड़ी खूबसूरत घटित होती हैं। पहला, उसके जीवन से तनाव, टकराव, निराशा, डिप्रेशन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब उसकी चेतना नए का स्वागत करने के लिए तैयार है। ठीक वैसे ही जैसे कि अब ठंड के दिन आ रहे हैं, पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुरने लगेगा, तो आप इस ठंड का स्वागत करने के लिए रजाई, कोट और स्वेटर के साथ तैयार हैं। तो तैयार है तो ठंड आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, आप उसे एंजॉय करेंगे। तो डिप्रेशन, कष्ट, घबराहट, टकराव, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, जीवन खुशहाल बन जाता है। कहने का दूसरा अर्थ, कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि जीवन खुशहाल बन जाता है। और जो दूसरी सबसे बड़ी घटना घटित होती है वो ये, क्योंकि समय के साथ तालमेल अब बैठ चुका है हमारी चेतना का, इसलिए सफलता हमारे लिए आसान हो जाती है। सच पूछिए तो मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि शायद सफलता हमारे लिए ही बनी हुई होती है, क्योंकि वो तालमेल हमारा बैठ रहा है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि मेरे जो प्रिय श्रोता हैं शायद लंबे समय तक मुझे सुनते सुनते काफी कुछ मेरे विचारों से वाकिफ भी हो गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। थोड़ा लिखा ज्यादा समझना, पहले के लेटर्स में लिखा जाता था, जब हम लोग चिट्ठी लिखते थे आखिरी में लिखा जाता था थोड़ा लिखा ज्यादा समझना। तो मुझे लगता है कि जो मेरे अब काफी समय से मुझे सुन रहे हैं वो भी मैं कहता कम होगा और शायद वो ज्यादा समझ जाते होंगे, यहां तक कि उससे भी ज्यादा जितना मैं उनसे कहना चाह रहा हूंगा। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब केवल यही है कि समय का, समय के प्रवाह का, समय के बदलते हुए स्वरूप का स्वागत करने के लिए अपने हाथ में थाल सजा लीजिए, उसकी आरती उतारिए, उसका स्वागत कीजिए, उसके आगमन के गीत गाइए। आप देखिए कि आप और हम सबका जीवन अपने आप में ही एक गीत में तब्दील हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं एआईआर न्यूज पर। कल के एआईआर न्यूज आपने सुनी होगी, आपका क्या ख्याल है कल के एआईआर न्यूज को हम कितना महत्व दें, खासकर अपने सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी के लिहाज से? आप देखेंगे कि ऐसी कोई बहुत महत्वपूर्ण न्यूज नहीं थी जिसको लेकर के आज हम उस पर चर्चा कर सके। और मित्रों, ऐसा होता है और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बेकार आपके 15 मिनट चले गए। नॉट एट ऑल, ये सोच आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक सिलसिला जो होता है न्यूज का, जो लगातार चलता रहता है, वो बाधित नहीं होना चाहिए। न्यूज में दो तीन छोटी छोटी बातें थी मित्रों, जिस पर डिस्कशन करने के लिए कोई खास नहीं है। पहला तो यही है कि नीतीश कुमार जी बिहार के पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड होगी। आज वो शपथ लेंगे, या हो सकता है कि जब तक आप इस ऑडियो को सुने वो शपथ ले चुके होंगे। बिहार में चुनाव हुए थे, उस पृष्ठभूमि में आप देखेंगे। अब ये जो बिहार के जो चुनाव हुए हैं, इसके बारे में धीरे धीरे एनालिसिस आने लगी हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपने अपने ढंग से उसका विश्लेषण कर रहे हैं। एक जो महत्वपूर्ण विश्लेषण जो मुझे पढ़ने को मिला, उधर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि अभी भी बिहार में जातिवाद बहुत ज्यादा है, और चूंकि दो पार्टियों में, खासकर तीन में अगर हम माने, लालू यादव जी की पार्टी, नीतीश कुमार जी की और कांग्रेस पार्टी में एक महागठबंधन हो गया था, तो इनके वोट आपस में कट नहीं पाए और सारे के सारे जातियों ने एक कैंडिडेट को वोट दिया, जिसके कारण बीजेपी नहीं टिक पाई। ये एक विश्लेषण है, लेकिन एक दूसरा विश्लेषण भी है। दूसरा विश्लेषण यह है मित्रों कि अब खासकर जो भारत है, जो भारत की चेतना है, वो एक तरीके से किसी भी तरह के संप्रदायवाद, जातिवाद, इन सब चीजों से धीरे धीरे उबरती चली जा रही है। समाज में जो एक असहिष्णुता का माहौल दिखाई दिया, बिहार के मतदाताओं ने एक तरीके से उस माहौल को अस्वीकार कर दिया, यानी पूरे देश को मैसेज दिया है कि असहिष्णुता भारत के डीएनए में नहीं है। एक ये विश्लेषण आ रहा है। दूसरा विश्लेषण और भी अलग अलग तरीके के हैं, जिसमें एक बात यह भी कही जाती है कि अब हमारे जो मतदाता हैं वो ज्यादा मेच्योर हो गए हैं, और खासकर जो लोअर तबके के लोग थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी ने कुछ दिनों पहले, चुनाव से कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि जो आरक्षण है, आरक्षण नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए, मतलब उसका क्राइटेरिया अलग से बनाया जाना चाहिए। बात उन्होंने बहुत ही लॉजिकल कही थी, तो कुछ लोगों का कहना है कि इसका गलत संदेश बिहार के मतदाताओं पर गया और उनको ऐसा लगा जैसे कि आरक्षण को समाप्त करने की बात कही जा रही है, उनके अधिकार को छीनने की बात कही जा रही है, तो वो एक तरीके से बीजेपी से डरने लगे, तो उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिए और फलस्वरूप महागठबंधन की जीत हुई। तो इस तरह के अलग अलग विश्लेषण आ रहे हैं। आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सिविल सर्विस में जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो की जो बात है, जो पॉलिटिक जिसको हम कहते हैं, उसके एनालिसिस में आप सारी चीजों को शामिल कर सकें, यानी कि एग्जामिनर को ये लगे कि नहीं, आपको सारी चीजों की समझ है, आपकी पकड़ भी है और आप अपने विश्लेषण में उन सब चीजों को लेकर चल रहे हैं। एक बात तो निश्चित है मित्रों कि जो नीतीश कुमार जी हैं, कहा जाता है कि बिहार, जब से वो बिहार के सीएम बने हैं और लगातार बने ही हुए हैं, तब से बिहार में काफी सकारात्मक बदलाव आए हैं, जो खासकर ह्यूमन ग्रोथ के जो इंडेक्स होते हैं, खासकर जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इन सब में काफी कमी आई है, इलिटरेसी में भी कमी आई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पहले से काफी बेहतर हुआ है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, आपराधिक गतिविधियां भी कम हुई हैं। तो एक तरीके से एक समय था जब नीतीश कुमार जी को एक तरीके से पूरे देश में एक विकास पुरुष जैसा ही एक माना जा रहा था, कि जो अप्रोच ये लेकर के चल रहे थे वो बहुत ही परफेक्ट है और इनकी तारीफ में काफी लेख भी लिखे जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अब बिहार के वो फिर से सीएम बनने जा रहे हैं। अब आगे 5 साल सत्ता उनके पास रहेगी और देखिए कि बिहार अब किस तरीके से आगे बढ़ता है। नो डाउट, मैं पहले भी बता चुका हूं कि बिहार इतिहास काल से हिंदुस्तान का एक बहुत ही वाइब्रेंट स्टेट रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य रहा है, न केवल खनिज और प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से ही, बल्कि टैलेंट की दृष्टि से भी, प्रतिभा की दृष्टि से भी बिहार बहुत उपजाऊ भूमि रही है। और मुझे सच में लगता है कि अगर बिहार एक बार फिर से वाइब्रेंट, जीवंत होकर के और बहुत इमर्ज होकर के अगर उभरता है, तो वह हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलने में बड़ा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो मित्रों, ये पहली खबर थी। दूसरी खबर जो सेवंथ पे कमीशन को लेकर के थी, सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट आ गई है। वेतन आयोग के बारे में मैं केवल आपको ये बताना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार में जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, हर 10 साल में उनके वेतन पर विचार करने के लिए एक आयोग बनाया जाता है कि अब इनका वेतन किस तरीके का होना चाहिए, कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए और क्या सेवा शर्तों में सुधार बदलाव लाए जाने चाहिए समय के बदलाव के साथ, ताकि उनका तालमेल बैठ सके। तो लगभग हर 10 साल में ये घटना घटित होती है। पिछला 2006 में वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी और अभी 2015 में वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। तो आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि जनवरी 2016 से ये लागू होगी। इसके बारे में मित्रों ज्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, चूंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो कितनी सैलरी होती है एक आईएएस अफसर की, क्या सेवा शर्तें होती हैं, कब कितने में प्रमोशन होता है, उन सब चीजों को आप डिटेल्स में जानना चाहेंगे तो आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल जो बात आपको सिविल सर्वेंट बना सकती है उसमें इस खबर की केवल इतनी भूमिका है कि आप देख रहे हैं कि एक आंकड़ा आ रहा है कि अगर सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी गई, यानी कि कर्मचारी अधिकारियों के वेतन बढ़ा दिए गए, तो सरकारी खजाने पर लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जो राजकोषीय घाटा को उन्होंने, आपने आंकड़ा भी सुना, 0.65% राजकोषीय घाटा इससे बढ़ जाएगा। ये जो पैसा सरकार के खजाने से निकलेगा ये कहां जाएगा? अगर ये पैसा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के हाथ में आएगा तो डेफिनेटली ये इसको बाजार में खर्च करेंगे। सामान्यतया जो रिसर्च है दोस्तों, इस बारे में किए गए जो स्टडीज हैं वो बताते हैं कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को जो पैसा मिलता है वेतन के रूप में, उसका वो 60% लगभग 60% वो मार्केट में खर्च कर देते हैं, चाहे रेस्टोरेंट जाएं, सिनेमा जाएं, दुकान में जाएं, जो भी है। तो ये जो पैसा बढ़ेगा ये मार्केट में आएगा। अब मैं समझता हूं कि मेरे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैच के स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से अब इसके एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर ये पैसा मार्केट में आया तो इंडियन इकोनॉमी पर इसका किस तरीके का इंपैक्ट होगा, महंगाई पर, मुद्रास्फीति पर किस तरह का इंपैक्ट होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर किस तरीके से इंपैक्ट होगा, कंज्यूमरिज्म किस सीमा तक बढ़ेगा, करप्शन में किस तरह सीमा तक कमी हो सकती है, एफिशिएंसी, गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है उस पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, इस तरीके कुछ निष्कर्ष आप लोग अपने अपने लेवल पर सोचकर निकाल सकते हैं। और सच पूछे तो इसे आप मेरी तरफ से दिया गया होमवर्क ही समझ लीजिए। और वैसे भी आप देखेंगे कि अब इस पर कुछ आर्टिकल्स भी आने शुरू हो जाएंगे। मित्रों, एक छोटी सी खबर है, उसके बारे में हम लोग आगे चलकर बात करेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अब सिंगापुर और मलेशिया जाने वाले हैं और इसका उद्देश्य यही है कि जो एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ भारत के संबंध किस तरीके से और मजबूत और घनिष्ठ बनाए जा सकते हैं। मित्रों, ये एक न्यूज में इतनी ही खबर थी। अब मैं आज न्यूज पेपर्स पर आता हूं और न्यूज पेपर्स में कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ अच्छी क्लिपिंग्स हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूं और आपकी जानकारी में भी होगा कि जो हमारा सेकेंड पेपर होता है, जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसका काफी बड़ा योगदान होता है। पूरे के पूरे हमारे पॉलिटिकल साइंस का ही एक हिस्सा है इंटरनेशनल रिलेशन। कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो सामान्यतया हमारी पकड़ में नहीं आते या हम उसे इग्नोर कर चुके होते हैं। हालांकि ऐसे प्रश्नों की संख्या होती बड़ी कम है, इक्के दुक्के ही ऐसे प्रश्न होते हैं। इसलिए मैं एक सलाह तो यह देना चाहूंगा कि ऐसे इक्के दुक्के प्रश्नों को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान न हो कि पता लगा कि कुछ भी फिर पढ़ते चले जा रहे हैं कि कहीं वो इक्का दुक्का ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से छूट जाए। अगर छूट जाता है छूटने दीजिए, लेकिन जो मेरी पकड़ में अगर कोई बात ऐसी आएगी तो वो डेफिनेटली आई विल लेट टू नो, मैं आप लोगों को बताऊंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज एक आर्टिकल छपा है, द कमिंग ट्रेड स्टॉर्म टाइटल से राजीव कुमार जी ने यह लिखा है, जो अपने आप में एक सीनियर फेलो है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के। एक बहुत अच्छा आर्टिकल उसमें लिखा है। इसका शीर्षक उन्होंने दिया है कि आने वाला व्यापारिक तूफान, वाणिज्यिक तूफान, मतलब अब एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जिसे उन्होंने 5 अक्टूबर को ही घटना माना है, और वो ये मान करके चल रहे हैं कि इससे पूरे विश्व में एक तरीके से व्यापार के क्षेत्र में एक तूफान आ जाएगा, खासकर भारत में विशेष रूप से। इन्होंने लिखा है दोस्तों कि 5 अक्टूबर को जो एक घटना घटी है वो एक तरीके से बहुत ही क्रांतिकारी घटना जैसी है, और वो घटना यह है कि 12 देशों ने जो पैसिफिक समुद्र प्रशांत महासागर के आसपास हैं, उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है। उस पैक्ट का नाम है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये जो बेसिकली है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और इसके अंतर्गत पूरे दुनिया के लगभग लगभग समझिए कि 87 करोड़ लोग आते हैं, और पूरा का पूरा जो ग्लोबल GDP है, विश्व का जो कुल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका लगभग 40% ये कवर करता है। ये तो एक बात हुई दोस्तों। इसके बाद एक और भी एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको इन्होंने मेगा डील कहा है, जो एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, उसका नाम है ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, TTIP, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। ये दो देशों के बीच, दो ग्रुप्स के बीच हुआ है। कह लीजिए एक तरफ तो अमेरिका है और दूसरे है यूरोपियन यूनियन। आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन अपने आप में कई राष्ट्रों का समूह है, और ये कुछ सालों में ये दोनों लागू हो जाएंगे। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को कौन सा, एक TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप और दूसरा है ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, अगर इन दोनों एग्रीमेंट को जोड़ दिया जाए तो ये पूरे की पूरी दुनिया का जो 70% डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, GDP है, उसको कवर करता है, और 60% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, दुनिया में जो भी व्यापार हो रहा है उसका 60% भाग कवर करता है। इसको लेकर के इन्होंने लिखा है राजीव कुमार जी ने कि ये एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के सामने, और भारत को अभी से इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। इससे होगा क्या आगे चल करके, आर्टिकल में आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं, मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया है। इससे होगा ये कि भारत का जो निर्यात है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, इसमें इन्होंने कहा है। उसका कारण स्वाभाविक है कि ये देश आपस में फिर व्यापार को ज्यादा महत्व देंगे। उसमें इन्होंने एक साइन भी दिया है कि जैसे देखिए कि इंडियन इंडस्ट्री के पिछले 11 महीनों में लगातार उसका जो एक्सपोर्ट है वो डाउन होता चला जा रहा है, और 2013 की तुलना में तो अभी हमारा लगभग लगभग एक्सपोर्ट आधा रह गया, यह अभी की घटना है, तो 4-5 दिन के आंकड़े आ रहे हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो अब भारत को करना क्या चाहिए, इसमें इन्होंने जो उपाय दिए हैं मित्रों, और सिविल सर्विस में आपको इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप इस पर मत जाइए कि ये जो TPP एग्रीमेंट है और TTIP एग्रीमेंट है ये क्या है और क्या इसके उद्देश्य हैं और कौन कौन से इसके प्रोविजंस हैं, उस पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है कि ये दो ट्रेड्स के, दो पैक्ट के नाम दे दिए जाएं और दे दिया जाए कि इसको ध्यान में रखते हुए भारत को क्या कदम उठाना चाहिए या भारत क्या कदम उठा रहा है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए ये दोनों पैक्ट को लेकर के आप हॉरिफाई मत हो जाइए, आतंकित मत हो जाइए, इसे सामान्य रूप में लीजिए। इसमें इन्होंने कहा है कि भारत को कोशिश ये करनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर वो फोकस करे, जैसे पहले तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए, और दूसरी जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बातें कही कि जो हमारे मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री हैं इनके लिए सरकार को बहुत अधिक सकारात्मक स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो 60% होता है वो केवल इन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री का होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि हमारे एक्सपोर्ट का 60% जो प्रोडक्शन है वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री से आता है। और बट नेचुरल है कि भारत की अभी जो जरूरत है वो आप जानते हैं। फिर से एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो इसमें दिया हुआ भी है कि भारत को हर साल 125 करोड़ लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराना है, 125 करोड़ लोगों के लिए, और ये रोजगार कहां से मुहैया होगा। बट नेचुरल है कि इसका सबसे बड़ा जो आधार बन सकता है वो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री ही बन सकते हैं। तो इस तरीके से मित्रों इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं और बताया है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें बिना देरी किए उसे जो रिफॉर्म करने हैं अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज में वो शुरू कर देने चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो जो दूसरी देशों से करना है उसके बारे में भी उसे ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे आप देख लेंगे। जो मेन चीज बातें थी वो मैंने आपको बता दी। साथ ही फ्रेंड्स एक दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल है, वरना हम नायक ढूंढते रह जाएंगे, ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इसे पढ़िएगा। खासकर अभी जो एक असहिष्णुता का माहौल बन रहा है उसको लेकर के है, कुछ विरोध होते हैं उनको लेकर के है, और बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, बड़े लॉजिकल तरीके से लिखा गया है, इसको आप एंजॉय भी करेंगे। तो आपको ये आर्टिकल है, और फिर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड का भी है जो खासकर महिलाओं कामकाजी महिलाओं के ऊपर है, और आप देखते हैं कि कामकाजी महिलाओं पर दो तीन क्वेश्चंस तो हर साल मेंस में आ ही जाते हैं, तो आपकी जानकारी में वो चीज बात होनी चाहिए। और दोस्तों एक एग्रीकल्चर के ऊपर है, भारतीय एग्रीकल्चर पर, हालांकि कोई नई बात नहीं है, आप लोगों को इसकी ढेर सारी बातें जानकारी में आप लोगों के होंगी, लेकिन फिर भी दोहरा लेने में कोई हर्ज नहीं है। जब हम चीजें दोहराते रहते हैं तो फिर हमारे दिमाग में वो साइन अच्छी होती है। साथ ही मित्रों मैंने एक चीनी के ऊपर भी, जो शुगर है उसके ऊपर राष्ट्रीय सहारा का एक आर्टिकल आया है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। कल मैंने आपको बताया था कि जो शुगर मिल्स का जो संकट है वो एक इंपॉर्टेंट तरीके से देश के सामने उभर रहा है, तो कुछ पॉइंट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। मित्रों ये दो तीन और भी अखबारों की क्लिपिंग्स हैं, वो नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल हैं, वो आप लोग देख लेंगे। दोस्तों अब मैं आता हूं ईमेल पर। एक मेल है प्रभजोत कौर का रोपड़ पंजाब से, जिन्होंने कहा है कि वो पंजाबी में सिविल सर्विस देना चाहती हैं। तो बिल्कुल प्रभजोत आप बिल्कुल चिंता न करें, आप किसी भी लैंग्वेज में जो उसमें अप्रूव्ड हैं आप दे सकती हैं। आप अपने दिमाग से ये बात तो बिल्कुल निकाल दें कि इससे आपको किसी तरीके का कोई नुकसान होगा, नॉट एट ऑल। आपने जो मटेरियल के लिए पूछा है कि ये कहाँ अवेलेबल होगा, तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि पंजाबी में कहाँ किस तरीके की किताबें हैं, लिटरेचर हैं, वो मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। आप तो चूंकि खुद ही रोपड़ पंजाब से हैं तो मैं समझ से मेरी तुलना में कई गुना ज्यादा अधिक जानकारी आपके पास होगी। लेकिन जहां तक पंजाबी लैंग्वेज मीडियम में देने का सवाल है, मैं ये बताना चाहूंगा कि उसके लिए आप कोई भी अपने मन में किसी तरह की आशंका न रखें। मित्रों इसके अतिरिक्त बहुत से मेल आए हैं, उन सभी मेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, चंदन पांडे जो नवादा बिहार से हैं, संदीप कुमार जो हरिद्वार से हैं, राकेश कुमार बंगलुरु से हैं, योगेश हैं और एपी पांडे लखनऊ से हैं। आप सबका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब आज का ये डेली ऑडियो यहीं विराम चाहता है। अब दो दिनों के बाद सोमवार को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप लोगों के ये दो दिन बहुत सुखद हों, इस कामना के साथ अब विदा चाहूंगा। नमस्कार।